जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीर्थ वनचारी, जमुना तीर्थ वनचारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजगचार्य अष्ट सरस्वती श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजगचार्य अष्ट सरस्वती श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की समवेत भक्त वृंद की श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयान्मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती न इष्टकी ओम ज्ञानाधिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदांतिकं वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीशाखानुसंस्थ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तत्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। तो पिछले भागवत की जो कथा थी तो उसमें हमें सुने थे किस प्रकार ये भक्ति संसार में लोग सकाम कर्म में आकर्षित होते हैं, जिस प्रकार एक पतिंगा आग की तरफ आकर्षित होती है और उनके जो ज्वाला उनके जो बहुत बड़ा कष्ट है उनको न समझते हुए वो आग को स्पर्श करने के लिए जब आग के पास पहुंचती है और पहुंचने मात्र ही वो आग में भस्मीभूत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये जो सकाम कर्म में जो भौतिक संसार में लोग आकर्षित होते हैं ठीक पतिंगा की तरह है। पतिंगा जिस प्रकार आग के लिलिहान लाल लाल शिखा की तरह आकर्षित होकर दौड़ जाता है ठीक उसी प्रकार क्षणिक सुख के लिए भौतिक संसार में मनुष्य जीव क्षणिक सुख के लिए पतिंगा की तरह ये सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने सारा जीवन को व्यर्थ गंवा देता है और इसमें दुखी होते हैं। वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जीवन के मूल्य जो भगवान के लिए ये मनुष्य जीवन खास करके जो भगवत प्राप्ति के लिए ये उद्देश्य को न समझते हुए किस प्रकार सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। बद्ध जीव का ये दशा को देखकर परीक्षित महाराज दुखी हो रहे हैं, दुख उनको हो रहा है। बद्ध जीव को दुख क्या है जो कर्म कर रहा है आगे जाकर के उनको अनगिनत दुख झेलना होगा, वो विषय में वो विषय को हृदयंगम करते हैं एक संत परीक्षित महाराज जिन्होंने मृत्यु का खबर पाते हुए किस प्रकार उसका तैयारी किया जाए मृत्यु का कैसे तैयारी किया जाए उसके विषय में बड़े ही सावधानी हो रहे थे। तो ये विषय परीक्षित महाराज के हृदय को बड़े ही द्रवीभूत कर रहा था और प्रश्न किया था किस प्रकार लोगों को सकाम कर्म से बचाया जाए और हमें सुने थे किस प्रकार सकाम कर्म होते हैं और सकाम कर्म को यदि हमें मुक्त होना है सकाम कर्म से यदि हमें मुक्त होना है तो तुरंत उनका प्रायश्चित करना चाहिए। तो ये विषय में भी हम पहले सुने हैं लेकिन कितने भी जो कर्म किए हैं वो कर्म का प्रायश्चित कितने भी भली भांति किया भी जाए फिर उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है। आप लोग सुने होंगे भागवत के भीतर नृग महाराज वैदिक कर्मकांड में इतने वो प्रवीण थे, इतने अभिज्ञ व्यक्ति थे और बड़े ही बड़े मतलब जागरूक हो करके किस प्रकार वो कर्मकांड का जो पद्धति को अपनाए थे और अंतिम में वो चिपकली बन जाते हैं और बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है उनके ऊपर, फिर वो चिपकली ज्योनि से उनको मुक्त होते हैं, उद्धार होती है। तो कर्मकांड कितने भी आकर्षित दिखे ना क्यों, उसमें बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा विपत्ति है उनके पीछे, बहुत बड़ा विपत्ति है। इसीलिए हमें कर्मकांड के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। ऐसे कि ज्ञान कांड भी वो बहुत बड़ा दुख है। ज्ञान जब एक व्यक्ति को हो जाता है तो ये भी हमें जन्म मृत्यु का एक प्रकार का बहाना है, एक प्रकार का आकर्षण है, जन्म मृत्यु का एक प्रकार का ये एक पूर्व सूचना है। ये जो ज्ञान जब किसी व्यक्ति को हो जाता है ये जन्म मृत्यु का पहले का सूचना है, क्योंकि ज्ञान जब हो जाता है व्यक्ति में, ये बात भी कुंती महारानी बताती है जन्माश्चर्य श्रुति स्विधि, ये चार चीज जो है मनुष्य के लिए और खास करके भक्तों के लिए ये बहुत बड़ा विपत्ति है। तो जो भी है यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने पहले भक्ति की बखान नहीं किए, पहले कर्मकांड बाद में ज्ञान कांड, उसके बाद वो भक्ति के विषय में बताते हैं। भक्ति थोड़ा भी किया जाए उसमें जीवन की सिद्धि है, और कर्मकांड ज्ञान कांड बहुत भी किया जाए उसमें बहुत बड़ा विपत्ति है। ये विषय को श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को बताते हैं। उसके बाद कर्मकांड का प्रायश्चित करने के बाद फिर भी उनका मन को संतोष नहीं हो पा रहा है, उनके मन को एक शांति प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और जब खुद ही वो शांति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं कर्मकांड ज्ञान कांड मार्ग के द्वारा, उपाय के द्वारा, तो खुद ही जब अपने, क्योंकि भक्त जो होते हैं वो कर्मकांड ज्ञान कांड में रुचि नहीं रखता। और ये यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद महान भागवत पुरुष है, महान भागवत है, बहुत बड़े भागवत के व्यक्ति है। तो वो जब कर्मकांड ज्ञान कांड के विषय में अपने शिष्य परीक्षित महाराज को कह रहे थे तो खुद ही वो बेचैन हो जा रहे थे। तो इसीलिए वो ज्यादा कर्मकांड ज्ञान कांड को ज्यादा विस्तार न करके, ज्यादा बखान न करके उस सीधा खुद ही पढ़ते हैं सब, मतलब एक जंप करते हैं भक्ति की ओर, भक्ति मार्ग के विषय में वो कहना सुनाना अपने शिष्य को चाहते हैं। तो ये भक्ति कैसे हो, ये भक्ति किस प्रकार का करना है, भक्ति तो करना है, भक्ति करना करने का भी एक कला है, भक्ति सब लोग नहीं कर पाते। अब यदि वो भक्ति सबके लिए है किंतु भक्ति की जो विधि है, भक्ति की जो एक सूक्ष्म कला है, भक्ति का जो सूक्ष्म छुपा हुआ रहस्य है, ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी ये बात को कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते बहुत बहुत जन्म लग जाएगा ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, जब ज्ञान होती है भक्ति के विषय में, जब ज्ञान होती है तब जाके वो भगवान का शरण को मानता है, तब जाके वो व्यक्ति भगवान का शरण को यही मेरा आश्रय करके समझ जाता है। नहीं तो भक्ति सबको नहीं होता है, भक्ति सब नहीं कर पाते हैं। तो भक्ति करना है, शुरुआत के समय बद्ध जीवों के भीतर अनेक दोष त्रुटि रहती है, तो शुरुआत के समय जो भक्ति के जो प्रोसेस के द्वारा, भक्ति की जो प्रक्रिया, भक्ति के जो उपाय, ये उपाय को अवलंबन, उपाय को अपनाना होती है। भक्ति इतने मतलब उच्च क्लास की ऊंची वस्तु है, उनको शुरुआत के समय कुछ भक्ति को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय है, यही उपाय को यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं। तपसा, भक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। ये बात को भी श्रीमद् भागवत के भीतर साक्षात भगवान के सत्यावश अवतार श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, तपोदिव्यम पुत्र का, हे मेरे पुत्र ये संसार के अल्प सुख के लिए प्रयास मत करो। आप लोग देखे होंगे ये संसार के लोगों में छोटी छोटी वस्तु में कितनी आसक्ति हो जाती है, छोटे छोटे वस्तु में वो कितने झगड़ हो जाती है, छोटे छोटे वस्तु में कितने वो लोगों में लोभ हो जाती है, बहुत छोटे छोटे वस्तु में। हाँ हाँ, तो यहाँ पर ऋषभदेव जी कहते हैं पुत्रों, ऐसे कि मल के भीतर कीड़ा को भी ये संसार की सुख लब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार जीव को जो सुख प्राप्त होना है वो मिल करके ही रहेगा। किंतु भक्ति, भक्ति केवल ये मनुष्य शरीर में ही किया जा सकता, पशु शरीर में नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान अति कृपा करके हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया। ये शास्त्र में बताया जाता है भक्ति केवल केवल भक्ति ये मनुष्य शरीर में ही किया जाएगा और किया जा सकता, और पशु शरीर में किया नहीं जा सकता। तो इसीलिए ऋषभदेव जी अपने पुत्र को कहते हैं, हे मेरे पुत्रों तपसा तप करो। कैसे, क्या, किसके किसके लिए तप करो? न तपो दिव्यम ब्रह्म सौख्यम अनंतम, ये अनंत सुख, ये संसार के सुख के लिए नहीं, अनंत ब्रह्म सौख्यम अनंतम, ब्रह्म सुख, ये जो अनंत सुख है, ब्रह्म सुख जो अनंत है, ये सुख के लिए तपस्या करो। तपो दिव्यम पुत्र का, तो यहाँ पर यही बात को ऋषभदेव जी जो बात कह रहे थे, यही बात को भी श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। परीक्षित महाराज तपसा तप करो। कलिजुग का तपस्या क्या है? जंगल में जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि हिमालय के कोई गुफा में, कि योगी लोग जब एक पैर में हिरण्यकशिपु जैसे एक पैर में खड़े होकर तपस्या करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कलिजुग की तपस्या बड़े ही सहज है, बड़े ही सरल है। यदि वो कलिजुग की तपस्या अति सहज और सरल है, किंतु लोगों का ये विषय के ऊपर विश्वास नहीं होता, लोगों में संशय होती है। लोग प्रश्न कर देते हैं, क्या यही करने से भगवान मिल जाएंगे? क्या यही करने से भगवत धाम प्राप्त होगा, भगवत धाम में पहुंच जाएंगे? लोगों के मन के भीतर बड़े ही संदेह होती है। अवश्य सत्य बात है, ये सत्य है, कलिजुग में तपस्या बड़े ही शरीर को कष्ट पीड़ा पहुंचा करके, शरीर को कष्ट दे करके तपस्या नहीं कर सकते। इसीलिए सारे शास्त्र एक स्वर में घोषणा करते हैं, एक स्वर में बताते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, केवल हरि का हरि का हरि का, केवल हरि का नाम ही ये कलिजुग का तपस्या है। यही तपस्या को अपनाने के लिए कलिजुग के लोगों को बताया जा रहा है। तो इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी यहाँ पर परीक्षित महाराज को कह रहे हैं तपसा तप करो। तपसा शब्द का अर्थ यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि स्वेच्छा से भौतिक सुख सुख से हट जाना। ये संसार के लोग जो भौतिक सुख के पीछे एक प्रकार उन्माद प्राय, एक प्रकार पागल बन चुके हैं। ये संसार के लोग ये भौतिक संसार के सुख प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का पागल बन गए हैं। वो तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कस्तूरी मुर्ग जैसे है, एक कस्तूरी मुर्ग जैसे रेगिस्तान में दौड़ मारता है ये सुगंधि प्राप्त करने के लिए। रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा, वो जो हिरण दौड़ मारता है लेकिन जैसे वो पानी को यही करके स्पर्श करना जाता है तो तुच्छा बालू है। और ये बालू कैसे, गरम गरम। रेगिस्तान में प्रखर सूर्य ताप होती है और सूर्य का ताप से वो आगे ऐसे प्रतीयमान होती है कि आगे मुझे पानी मिलेगा। ये संसार के सारे लोग ऐसे ही है, यही मुझे सुख मिलने वाला है, यही मुझे सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार सारा जीवन दौड़ करते हैं किंतु अवशेष में उनके हाथ में मृत्यु ही आ जाता है। सुख तो नहीं आता, सुख के जगह पर मृत्यु उनके हाथ में आ जाता है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं तपसा, स्वेच्छा से ये भौतिक संसार का सुख को छोड़ दो। स्वेच्छा से, जबरदस्ती से नहीं, स्वेच्छा से ये भौतिक संसार के जो सुख है, सुख तो नहीं है, भौतिक संसार में सुख करके कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि भगवान कहते दुखालय अशाश्वतम, ये दुख है, ये जगह जो है ये दुख की जगह है। भगवान कहते हैं, भगवान ये संसार जो बनाया तो उसके संसार बनाने के पीछे एक मैनुअल छोड़ा, ये मैनुअल है, ये संसार दुखालय में दुख भोगने के लिए ही है। तो यहाँ पर इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तपसा, ये संसार के जो सुख करके दिख जा रहा है ये सुख नहीं है, सुख के जगह पर बहुत बड़ा दुख है। इसीलिए ये संसार के वस्तु को छोड़ दो, ये संसार के वस्तुओं को छोड़ देना यही तपस्या है। और जो ये संसार का वस्तु को छोड़ दिया वो बहुत बड़े तपस्वी माना जाएगा। लेकिन छोड़ा नहीं जाता, हम छोड़ नहीं पाते हैं, हमें छोड़ नहीं पाते हैं। इच्छा होने के बाद भी ये संसार के सुखों को, ये संसार के वस्तुओं को हमें छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि छोड़ दो, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। छोड़ दो, नहीं हम छोड़ते नहीं है। संत कहता है छोड़ दो, हम नहीं छोड़ते। तो ये छोड़ देना यही ही तपस्या है, तपस्या करने के लिए यहाँ पर कहा जाता है। और क्या करने के लिए? भक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या, भक्ति पाने के लिए भौतिक सुख, भौतिक संसार की वस्तुओं को छोड़ना, उसके बाद ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब कुछ नियम, कुछ विधि है, वो विधि अवश्य पालन करना चाहिए। भगवान भी जब इस संसार को आते हैं कुछ नियम के भीतर ही रहते हैं, यदि वो भगवान नियम की परे हैं, किंतु भगवान जब इस संसार में आते हैं वो भी कुछ नियम पालन करते हैं। क्यों? हमें ये नियम के भीतर ही रहें। भगवान इसीलिए, भगवान नियम की परे हैं, किंतु भगवान जब इस संसार में आते हैं तो वो भी नियम अपने जीवन में पालन करके, लागू करके दिखाते हैं मनुष्य को किस प्रकार नियम के भीतर ही रहना चाहिए। कि नियम एक प्रकार का श्रृंखला बताती है, श्रृंखला ज्ञान। जब तक श्रृंखला ज्ञान अपना नहीं अपनाते तब तक आगे हमें सुख प्राप्त नहीं कर सकते। हर स्थिति में, ऑफिस में हो, घर में हो, एक प्रकार का डिसिप्लिन, एक प्रकार का श्रृंखला होनी चाहिए। ऑफिस में जाते हो कि घर में कुछ प्रकार का नियम है, कुछ प्रकार का श्रृंखला है। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है उसके लिए कुछ नियम, कुछ परहेज और कुछ कुछ मना किया जाता है और कुछ अपनाना जाता है। अपना जाता है और कुछ मना किया जाता है। क्या अपना जाता है और क्या मना किया जाता है ये भी शास्त्र में बताया जाता है, तो मैं विस्तार नहीं करेंगे। तो ब्रह्मचर्य व्रत को भी पालन करना चाहिए सामेन। और सबसे बड़ी त्रुटि हमें कर बैठते हैं, सबसे बड़ी भूल हमें करते हैं इंद्रियों के द्वारा। अरे इंद्रियों में सबसे उत्पात की इंद्रिय, सबसे उत्पात करती है मन। ये मन एक प्रकार के बंदर है। मन बंदर जैसे ना, कभी शांत नहीं रहता। मन एक बच्चा जैसे, बच्चा को आप इधर छोड़ दो तो शांति से एक जगह नहीं बैठेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, सारा दुनिया को दिमारेगा, सारे मंदिर को दिमारेगा। उसी प्रकार जैसे बंदर एक डाली में, दूसरे डाली, तीसरा, चौथा, इस सारा जंगल में वो डाली में कूदी मारता, ठीक मन भी ऐसे ही है, बच्चा है, वो समझता नहीं, बच्चा जैसे कुछ समझता नहीं है। ठीक उसी प्रकार ये मन एक बच्चा जैसे कुछ भी समझता नहीं है, बंदर की जैसे सारा दुनिया की सुख लेने के लिए वो कुछ प्रयास करता है। तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी भी ये कहते हैं समेन, यदि भगवान को प्राप्त करने के लोभ है, यदि भगवान प्राप्त की आकांक्षा है मन के भीतर, तभी मन, मन को नियंत्रण करो। मन सारे उत्पाद की जड़ है। मन ये जीवन की जो पुनरपि बार बार जन्म की मूल है। हमें जो बार बार जन्म लेते हैं वो जन्म के पीछे हमारा मन जो है मूल है। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी यहाँ पर कहते हैं समेन, मन को नियंत्रण करो। मन को नियंत्रण करना ये भी भारी कष्ट काम है, किंतु मन को नियंत्रण करना कष्ट है फिर भी असाध्य नहीं है। मन को नियंत्रण करना कष्ट नहीं है, यदि कष्ट है तो किंतु असाध्य नहीं है, कष्ट है। मन को नियंत्रण करना बड़े बड़े योगी लोग भी हार जाते हैं। ऐसे कि अर्जुन भी भगवान को बता दिया, हाथ उठा दिया, मुझसे नहीं होगा, मन को नियंत्रण मैं नहीं कर सकता, वायु के ऊपर मेरा कंट्रोल है, नियंत्रण है, किंतु मन के ऊपर कोई अख्तियार मेरा नहीं है। ये बात भी अर्जुन कितने बड़े भक्त, जो कि भगवान के अति करीब करीब व्यक्ति है, वो भी भगवान के सामने खोल दिया, ये मन को मैं कुछ कर नहीं सकता, मन के लिए मेरे पास कुछ दवाई नहीं है, इलाज नहीं है, तो आप बताइए। हाँ ये बात को आगे जाकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वैराग्य। दो चीज मन को नियंत्रण करने के लिए, दो चीज, वो एक है वैराग्य, दूसरा है अभ्यास। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास, मन को अभ्यास के द्वारा। और वैराग्य, हमेशा ये मन कुछ भोगना चाहता है लेकिन मन को त्याग करने के लिए सिखाओ। त्याग से वास्तविक आनंद है, भोग से रोग, त्याग से योग। भोग से रोग और त्याग से योग। आप जितना छोड़ोगे ये भौतिक संसार की वस्तु को छोड़ोगे, इतना आपका भगवान के साथ कनेक्शन होगा, योग होगा। त्याग से योग और भोग से रोग। आप जितना भोग करोगे इतने आप रोगी बन जाओगे, इतने बीमारी खरीद आएगा आपके पास। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है श्री सुखदेव गोस्वामी के पाद द्वारा कि समेन, मन के, मन को नियंत्रण करो, उसके बाद दमेन। दमेन मतलब मन को नियंत्रण करना, उसके बाद मन जब नहीं मानता, मन तो कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन मन एक सूक्ष्म चीज है। मन हम 24 घंटा क्रियाशील है, सोते समय शरीर सो जाता है लेकिन मन क्रियाशील है। हम जब रात को रात के समय सोते हैं तो शरीर सो जाता है लेकिन मन कभी सोता नहीं है, मन हमेशा जागरूक है, मन चेतन वस्तु है, मन जो है चेतनशील है, हमेशा वो सतेज रहता है। ऐसे कि सोते हुए समय में जब हमको मच्छर काटता है तो हमारा इंद्रिय जाकर के मन पहले डायरेक्शन देती है ये इंद्रियों को, तो मन जब डायरेक्शन देता है तो इंद्रिय जाकर के वो मच्छर को भगाता है कि पीड़ मारता है, ये पहले मन ऑर्डर देता है। इसी प्रकार मन ये इंद्रियों को ऑर्डर देता है, आदेश देता है। जब आपके मन के भीतर कुछ ना कुछ चलते रहे कि इंद्रियों को आप चुपचाप रखो, इंद्रियों को आप बिल्कुल क्रियाशील मत कराओ, मन क्रियाशील हो ठीक है, मन को कंट्रोल करने आपके बस में नहीं है, कम से कम आपका जो इंद्रिय है उनको तो नियंत्रण कर सकते हो। कि इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा तो पाप होती है कि कोई देखता नहीं है, मन के भीतर जो पाप होता है ना वो कोई देखता नहीं, दिखता नहीं है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो पाप होता है वो दिख पड़ता है। तो कम से कम मन के द्वारा जो पाप होता है उनको इंद्रियों में प्रकाश मत करो। धीरे धीरे मन के भीतर कई सारे पाप भक्तों के मन के भीतर भी कई सारे पाप आते हैं लेकिन लेफ्ट राइट करके उनको भगा देते हैं। जब मन के भीतर आता है, भक्तों के मन के भीतर पाप आता है, इधर जाओ आते रहो, आयराम गायराम ऐसे जैसे कहते हैं, आयराम गयराम, हाँ आओ और चले जाओ। ये जो मन जो पाप को स्वीकार करता है ये भक्त, ये पाप के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है दमेनो, मन जब पाप को लेकर उनको प्रकाश करना चाहता है तो आपका इंद्रियों को संयत करो। मन को संयत नहीं कर पा रहे हो ठीक है, आपके भीतर कोई क्षमता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है कि मन को नियंत्रण करना, कम से कम आपका इंद्रियों को तो नियंत्रण करोगे। जब आपके कोई व्यक्ति के साथ झगड़ा करते हो तो आप ये हाथ उठता हुए एक थप्पड़ लगाने के लिए, लेकिन ये हाथ को संभालो। यदि आप हाथ को संभाल लोगे तो फिर आगे और भयंकर और कुछ होने वाला जो होने वाला था वो नहीं होगा। तो मन कहता है थप्पड़ मारो लेकिन इंद्रियों को थप्पड़ मारने के लिए लगाओ मत। मन सूक्ष्म रूप में एक्टिव करता है, कार्य करता है लेकिन इंद्रियों उनको व्यवहारिक करता है। मन सूक्ष्म रूप में करता है लेकिन इंद्रियों उनको प्रैक्टिकल व्यवहारिक पूरा एकदम वो प्रैक्टिकल करता है, मार्क करता है, कार्य के रूप में करता है ना। इसीलिए यहाँ पर श्रील ये सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, हे मेरे परीक्षित महाराज, मन के भीतर जो पाप आती है तो उसको इंद्रियों के द्वारा रोको, उनको बंद करो। मन के भीतर जो पाप आती है तो उसको इंद्रियों के द्वारा नियंत्रण करो। तो आगे कहते हैं त्याग मैं अभी कह रहा था, त्याग बहुत बड़ा संपत्ति है क्योंकि ये संसार के लोग भोग करना चाहते हैं। हर व्यक्ति के भीतर भोग प्रवृत्ति है, त्याग प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि ये संसार में ये संसार के लक्षण ऐसा है, ये भौतिक संसार के जो लक्षण है भोग करने के लिए हमारे मन के भीतर है करके आज हमें ये भौतिक संसार में है। और इसीलिए प्रत्येक जीव के भीतर भोग प्रवृत्ति जितना मात्रा में है त्याग प्रवृत्ति उतना नहीं है। यदि हम 1000 कमाते हैं 1 रुपया भगवान को देखते हैं, यही हमारा मैं बहुत बड़ा त्याग किया, इसमें हमें संतोष करते हैं। एक फटेला लोट ना करके दान पेटी में डाल करके हमें बहुत बड़ा संतोष करते हैं, मैंने दान पेटी में डाला, बहुत बड़ा त्याग किया। हाँ, 1000 लाखों करोड़ कमाते हैं, ये संसार के लाखों करोड़ कमाते हैं लेकिन भगवान को जब देना होता है तो भगवान खाते हैं क्या? आप इतने खा करके इतने बड़े पेट बढ़ाया, लंबा किया, तो भगवान नहीं खाते हैं क्या? भगवान खाने के लिए अपने भक्तों का हाथ से खाने के लिए वैकुंठ को छोड़ देते हैं, लक्ष्मी का भोग को छोड़ करके विदुर के घर में पहुंच जाते हैं। विदुर अरे घरे कृष्ण करी लो भोजन, विदुर का घर में जाकर के भगवान कृष्ण भोजन किए, तो भगवान क्या? आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं आप लोग इतने राजभोग संध्या भोग बाल भोग ये भोग से भोग दिन तमाम खाली भोग लगाते हो, हाँ ये तो छोड़ो, जगन्नाथपुरी में जाओगे तो जगन्नाथ जी इतने खाते हैं उनका हाथ कभी सूखता नहीं है, जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखता नहीं है, इतने खाते हैं। अरे एक बार खाते हैं तो इतना खाते हैं ना, हाँ ऐसे भगवान खाते हैं। हाँ सही बात है, भगवान खाते हैं। तो ये बात को हमें यहाँ पर त्याग करना चाहिए। त्याग एक व्यक्ति का बहुत बड़ा धन है। धन कमा करके अपने पास रखना ये वास्तविक धन नहीं है, धन को छोड़ देना ये वास्तविक धन है। धन को कमा करके अपने पांठी में रखना, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाना, ये बात वास्तविक धनवान व्यक्ति वो नहीं है, कंजूस है, उसको कंजूस कहा जाता है, कृपण है। लेकिन जिन्होंने धन को छोड़ दिया, जिनको धन को वितरण कर दिया, तो वो वास्तविक धनवान है, उनको उनका प्रशंसा गाई जा रही है। हाँ, ये वास्तविक धनवान व्यक्ति है। जो धनी व्यक्ति अपने धन को वितरण कर दिया तो लोगों में उनका बड़ा आदर होती है, लोगों में उनका बड़ा भारी प्रशंसा होती है। हाँ, ये ही व्यक्ति धनवान व्यक्ति है। हाँ, ये धनी व्यक्ति है। लेकिन जिन्होंने धन को रख करके नहीं देता है, उनको लोग क्या कहते हैं, कंजूस व्यक्ति है, कहते हैं ना लोग। हाँ, ये इतने बड़ा कंजूस है। हाँ, इतने धनी व्यक्ति है, सबको धन दे रहा। तो यहाँ पर यही बात को श्रील रूप सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, त्याग त्याग करो। तो और एक बात यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं त्याग करने के लिए कि हमारे पास है क्या, हमारे पास है क्या, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, हमारे पास ऐसे कुछ नहीं है जो भगवान को दें। फिर भी हमारे पास कुछ न होते हुए भी जो चीज हमारा अख्तियार में है, यदि वही चीज को हमें भगवान को देंगे, वो चीज के कारण भगवान संतुष्ट होते हैं। जब हमें गंगा में जाते हैं, बॉम्बे से पानी लेके नहीं जाते हैं, गंगा में जाके गंगा का पानी उठा करके गंगा मैया को उठा देते हैं ना, गंगा मैया संतुष्ट हो जाती है। तो उसी प्रकार भगवान जो भी हमारे पास है, भगवान का संपत्ति है। तो भगवान का संपत्ति को भगवान को दे देने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, त्यागेन, उसके पास सत्य। सत्य बहुत बड़ा गुण है भक्तों का। भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्य बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक खुराक है, आध्यात्मिक बल है। एक सत्य एक बहुत बड़ा लाठी है। एक बद्ध जीव एक रुग्ण व्यक्ति है, बद्ध जीव एक रोगी है। ए रोगी व्यक्ति का सत्य एक दंडा है, जिसके एक वृद्ध व्यक्ति जिस प्रकार के दंडा का सहारा से चलता है, उसी प्रकार ये बद्ध जीव एक रुग्ण व्यक्ति है, उनका भगवत धाम पहुंचने के लिए सत्य एक दंडा है। ये सत्य रूपी दंडा को यदि कोई व्यक्ति कोई बद्ध जीव पकड़ लिया, तो ये सत्य रूपी दंडा उनको भगवत धाम पहुंचा देगा। लेकिन आज हम कितने बातों में झूठ बोलते हैं, ऑफिस में, दफ्तर में, घर में, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, ऐसे कि बच्चों के सामने भी बोलते हैं। बच्चे भी कभी कभी हमें हैरेसमेंट कर देते हैं, पापा आपने झूठ बोला। पापा बोलते हैं है, क्या करना पड़ेगा, झूठ बोलना होता है, तो ये तो कोई सत्य में नहीं है। तो उसके बाद शौच्य मतलब एक व्यक्ति अपने को बाहर और भीतर से शुद्धता रखना चाहिए। बाहर से हमें स्नान वगैरह करके अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, शरीर को अवश्य शुद्ध रखना चाहिए स्नान करके। इसीलिए स्कंद संस्था में खास करके सन्यासियों को, खास करके ब्रह्मचारियों को दिन में कम से कम 3 बार स्नान करना चाहिए। ये बात को ब्रह्मचारी कृष्ण कॉन्शियसनेस किताब में हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज ये भी बात बताते हैं। कम से कम है ब्रह्मचारियों को, भक्तों को, खाली ब्रह्मचारी नहीं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनको कम से कम दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। तो एक बार ही जोली ने राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे, तो एक बार वो बाहर गए थे तो कोई कह दिया, ओ एयरपोर्ट में बैठे थे तो ओ आप ये नहाने वाला संस्था का आदमी हो जो संस्था में हमेशा नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो इसलिए मुस्लिम लोग कहते हैं, हाँ अरे हाँ ऐसा ये क्या ऐसा कुछ अच्छे कर्म मत करो, नहीं तो भगवान आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म दे देंगे, नहाते नहाते आप नाके दम हो जाओगे। मुस्लिम लोग कहते हैं अरे ज्यादा पुण्य कर्म मत करो, क्योंकि मुस्लिम लोग क्या है ना, ऐसे कि गाय का काट करते हैं। वैदिक शास्त्र में गाय का हत्या से बढ़कर के पाप नहीं है। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं अरे पुण्य कर्म मत करो, हाँ तो भगवान आपको ब्राह्मण के घर में जब जन्म दे देगा तो स्नान करते करते आप नाके दम हो जाओगे। हाँ, तो हमारा संस्था को कोई व्यक्ति स्नान नहाने का संस्था के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि हमारे संस्था में ज्यादा नहाते हैं। हाँ, एक एक कोई गया स्नान किया, दो गया ना स्नान किया, कोई किधर छू दिया स्नान किया, किधर देख लिया स्नान किया। स्नान करना हमारा संस्था में बहुत बड़ा एक गुण है, बहुत बड़ा एक विषय है। तो यहाँ पर ये बात भी श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, बाहर से हमें स्नान वगैरह करके हमारा शरीर को स्वच्छ शुद्ध रखना चाहिए, और अंदर से बाहर आसान है, बाहर हमारा शरीर को शुद्ध रखना आसान है, लेकिन अंदर कैसे शुद्ध रखेंगे? अंदर में तो कितने पाप है, अंदर के पाप को गंगा जल के द्वारा भी शुद्ध नहीं किया जा सकता। कोई सोचे मैं गंगा में स्नान करूंगा मेरा अंदर के पाप शुद्ध हो जाएगा, तो गंगा में डुबकी लगाने से अंदर के पाप धो नहीं जाता है। गंगा में डुबकी लगाने की वृंदावन में जमुना में जाकर के स्नान करने से अंदर की पाप धो नहीं जाता है। तो अंदर की पाप को धोने के लिए गुरु उपादेश, यदि कितने भी सक्षम व्यक्ति हो संसार में, अपने आश्रय के द्वारा अपने गंगा यमुना में स्नान करने से अपने अंदर को पाप को धोने के लिए आपको भगवान या भगवान के व्यक्तियों का आश्रय, भक्तों के आश्रय लेना होगा, तभी जाके हमें अंदर के पाप को धो सकते हैं। और अंदर की पाप को धोने के लिए कलयुग में ये हरे कृष्ण महामंत्र बताया गया। तो ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमें अंदर की पाप को धोएंगे, लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र रूपी जो तीर्थ है, तीर्थ जल है, ये जल के द्वारा तभी हमें शुद्ध कर पाएंगे हमारा अंदर को, जब भी हमें संतों के आश्रय में जाएंगे, भक्तों के आश्रय में जाएंगे, तभी जाके हरे कृष्ण मंत्रों के द्वारा हमें शुद्ध हो अपने अंदर को शुद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ पर आगे जाके कह रहे हैं, सत्य सौच्यम यमेन, और किसी के प्रति आप हिंसा मत करो। और हिंसा करना, ईर्ष्या करना भौतिक जगत का बहुत बड़ा लक्षण है। प्राय लोग एक दूसरे को ईर्ष्या करता, ये जगत की लक्षण है, भौतिक जगत की लक्षण है, एक दूसरे को ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या करना ये बहुत बड़ा मतलब विपत्ति का तैयारी है। जो संसार में ईर्ष्या करता है उनका पूर्ववर्ती जीवन बिच्छू या सांप जोनी में जाना पड़ेगा। बिच्छू और सांप ये दोनों जो है ईर्ष्यालु प्राणी है, इसीलिए भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज बिच्छू और सांप को मारने के लिए कहे थे। हाँ, तो यहाँ पर ईर्ष्या, आप किसी को ईर्ष्या मत करो। और जब तक आपके मन में ईर्ष्या है तब भगवान का प्राप्ति नहीं हो सकता। सबका इलाज है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह, ये सबका इलाज है, लेकिन ईर्ष्या का इलाज नहीं है। ईर्ष्या का कोई प्रतिकार नहीं है, तो ये ईर्ष्या को कैसे छोड़ेंगे? और जब तक आप ईर्ष्या, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि महाराज जी बता रहे थे ऐसे कि जब तक आपके भीतर ईर्ष्या है, भक्त बनने के बाद यदि एक भक्त के भीतर ईर्ष्या है तो भक्त नहीं है। भक्त बन के यदि वो ईर्ष्या करता है वो भक्त नहीं है। तो फिर ईर्ष्या है फिर कैसे भक्त है? तो ईर्ष्या से हम बचना चाहिए। यदि आपके मन के किसी के भीतर ईर्ष्या होती है, भक्तों के समाज के भीतर भी, तो ये मन को एक प्रकार का सांत्वना देना चाहिए। आखिर जाएगा तो कहां जाएगा? भगवत धाम जाएगा ना। तो एक जीवात्मा भगवत धाम जा रहे हैं, हमको खुशी होना चाहिए। मैं नहीं जा पा रहा, ठीक है मेरा कोई शक्ति नहीं है, मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मेरे और कोई भक्त जा रहा है, वो भगवत धाम जा रहे हैं, ये देख करके मुझे संतोष करना चाहिए, ना कि ईर्ष्या करना है। भगवत धाम कोई यदि जा रहा है इसमें हमें खुशी होना चाहिए। अरे भगवत धाम जाए के किसके संग करेगा? भगवान श्री कृष्ण के संग करेगा। और यदि सही में आप कृष्ण को प्रेम करते हो, जैसे एक स्त्री एक पति पत्नी, तो सामने वाला कोई व्यक्ति आया, आकर के वो स्त्री का पति को आदर दिया, तो स्त्री को आदर नहीं दिया, तो ये अपने पति को आदर देने मात्र से वो स्त्री खुश हो जाती है। उनको आदर नहीं दिया सामने वाला व्यक्ति, उनका पति को सम्मान दिया, आदर प्रेम किया, तो उनका पति को आदर देने से वो पत्नी खुश हो जाता। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण को आदर देने से, भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण के आदर देने से तो भक्तों को भी एक प्रकार का सुख प्राप्त होती है। मैंने मतलब भगवान के पास, ये बात कुछ थोड़ा ही मैं बोल रहा हूं, तो भगवान के पास यदि कोई व्यक्ति, यदि आपके हाँ, यदि आपके आपके भीतर भगवान को प्रेम, सच्चे प्रेम है, यदि सच्चे दिल से भगवान को प्रेम करते हो, यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास पहुंचता है तो आपको एक प्रकार का सुख प्राप्त होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, आप खुशी हो गए। तो इसीलिए ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, किसी को साप नहीं देना चाहिए। भक्तों के समाज में भी दिखा जाता है, बहुत बड़े बड़े योगी बने, बहुत बड़े बड़े तपस्वी बने, साप दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं साप नहीं देना चाहिए, किसी को अभिशाप नहीं देना चाहिए। और जो भक्त अभिशाप देने की प्रवृत्ति रखता है अपने भीतर, वो तमोगुण के भक्त है। भक्त है लेकिन कैसे भक्त है? तमोगुण के भक्त है। कि भक्त जो होता है वो साप से, ये बद्ध जीवन है, एक सापित जीवन है, ये बद्ध, ये साप से मुक्त करना चाहता है। लेकिन जो भक्त होकर के साप देता है वो तमोगुण का भक्त है, वो भक्त है ही नहीं, एक प्रकार का मानना चाहिए। भक्त होकर के जो साप साप देने की प्रवृत्ति होती है ना, वो भक्त नहीं है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं किसी को साप नहीं देना चाहिए या किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा नहीं करना चाहिए, जब तक आप हिंसा नहीं छोड़ोगे भगवत सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे, भगवत आनंद आपके भीतर उत्पन्न नहीं होगा, तो ये छोड़ना चाहिए। उसके बाद कहते हैं सर यमेन कहा शौच यमेन महा, मतलब और उसके बाद नियमेन, तभी जाके आप भगवान का कीर्तन कर पाओगे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत पालन करोगे, तपस्या, अपने इंद्रियों का नियंत्रण, उसके बाद त्याग, सत्य, शौच्य, यमेन, और उसके बाद ये सब पालन करोगे तभी जाके नियमेन भगवान का कीर्तन तभी होगा। भगवान का कीर्तन ये कलिजुग का भक्ति है। भगवान का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलिजुग का यही कीर्तन है। ये कीर्तन हरे कृष्ण मंत्र कितने हजारों करोड़ों अरब लोग जप करते हैं, लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र जपने से, हमारे आचार्य लोग भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र जीवा में लेने मात्र से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन कितने लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त किए हैं हरे कृष्ण मंत्र जप के द्वारा? कितने लोग ये हरे कृष्ण मंत्र जप करके भगवान का प्रेम को अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ना हमारे भीतर ईर्ष्या है, हिंसा है, इस प्रकार का दुर्गुण है। इसीलिए ये जो नाम से वो आनंद को हम अनुभव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर ये सब कुछ छोड़ेंगे, ये जो मैं पहले बताया, ये सब कुछ छोड़ेंगे तो अभी जाके हमें कीर्तन कर पाएंगे, मतलब हमें जप कर पाएंगे, हरे कृष्ण मंत्र जप कर पाएंगे। नियमेन वा देह बाक बुद्धि, देह बाक और बुद्धि, उसके बाद ये तो करेंगे, उसके बाद हमारा देह, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, ये शरीर हमेशा कुछ भोग करने की, कुछ पाने की, प्राप्त करने की इच्छा करता है। मैं यदि सुंदर नहीं हूं, जो सामने वाला सुंदर व्यक्ति को देख करके मैं भी सोचता हूं मैं उसके जैसे सुंदर हो जाऊं, मेरे भी तो ज्ञान नहीं है, सामने वाला ज्ञानी व्यक्ति को देख के मैं भी ज्ञानी बनने के लिए इच्छा होता है। ये शरीर का भोग है, ये शरीर का भोग, भोग भोग लग, पेट को जैसे भोग लगता है, शरीर का ये भोग है। तो यहां पर ये कह देह बाक वाणी, हाँ ये शरीर का बाक वाणी और बुद्धि, उसका उसको भी, शरीर का भोग, शरीर वाणी और बुद्धि को भी धीर बनाना चाहिए। यदि आपके भीतर कुछ ऐसे आता है ना, अपने को धीर बनाओ, आता है ना कम से कम कुछ समय के लिए आप धीर बन जाओ। क्रोध आता है ना तो कुछ समय शांत हो जाओ, धीर बनो। जो व्यक्ति धीर व्यक्ति है ना, वो बहुत सारे चीजों को नियंत्रण कर सकता है। जो व्यक्ति धीर व्यक्ति है, इसीलिए गोस्वामी शकम में गाया जाता है, धीर धीर जन करो प्रिय करो। जो धीर व्यक्ति है वो सबका प्रिय भाजन होता है, धीर व्यक्ति को बड़े ही प्रशंसा करते, धीर व्यक्ति का सब जगह में आदर होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को धीर बनना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं देह को, वाणी को और बुद्धि को धीर करना चाहिए, मतलब स्थिर करना चाहिए। ये हमेशा हाँ मतलब चलायमान होती है, मतलब हो मतलब बुद्धि को हमारे जो भक्ति को नष्ट करने के लिए वो एक प्रकार का ये करती है, तो उसको धीर बनाना चाहिए। धीरा जब ये इस प्रकार का धीर करेंगे, हमारा वाणी हमारा शरीर हमारा बुद्धि को जब धीर बनाएंगे, तभी जाके धर्म की जो सिद्धांत है, धर्म की जो रहस्य है, भक्ति का जो गूढ़ ज्ञान है, तभी हमें समझ पाएंगे। जिसका इंद्रिय अधीर है, अधीर है, धीर नहीं है, जिसका इंद्रिय अधीर है, जिसका बुद्धि अधीर है, धीर नहीं है, वो भक्ति का सिद्धांत को नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर श्रील रूप सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं धर्म ज्ञान, धर्म का धर्म ज्ञान, ज्ञान मतलब धर्म को वो जान नहीं सकता। जब तक हमें अपने को धीर नहीं बनाते, तब तक हमें धर्म को हमें नहीं समझ सकते, धर्म के सिद्धांत को नहीं समझ सकते। तो पहले हमको धीर बनाना चाहिए, धीर बना करके धर्म के सिद्धांत को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। कैसे? धर्म का सिद्धांत पहले हमको धीर बनाना है, बाद में धर्म का सिद्धांत को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, उसके बाद ये धर्म के सिद्धांत को समझना है। कैसे? कैसे धर्म के सिद्धांत को समझने के लिए कैसे कैसे समझना है ना? श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। ये बात को भी आदो श्रद्धा, आदो पहले हर चीज में एक श्रद्धा होनी चाहिए। तो उसी प्रकार श्रील रूप सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं धर्म का भक्ति का गुह्यता को, भक्ति का ज्ञान को समझने के लिए आपको श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा के बिना, श्रद्धा एक मतलब सबसे बड़ा चाबी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, कि ये ज्ञान को हासिल करने के लिए श्रद्धा एक चाबी है, उसके द्वारा ज्ञान का घर खुलता है। यदि आपके भीतर श्रद्धा है तो ज्ञान की घर खुल जाएगा। खाली ज्ञान की घर नहीं है, भौतिक क्षेत्र में देखो, भौतिक लोग जो कुछ कर्म करते हैं कितनी बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा की बात आती है, श्रद्धान्विता। जब मैं इसी प्रकार हम खुद को धीर बनाकर और धर्म के विषय में, धर्म के विषय में समझने के लिए ये श्रद्धा रखेंगे, तभी जाके हमारे जो पूर्व और अभी हो गया संचित प्रारब्ध क्रियमाण, संचय जो किए पाप संचय किए प्रारब्ध, पिछले पिछले कई जन्मों का पाप क्रियमाण, अभी जो भी क्रियमाण अभी करते करते कुछ पाप कर लिए, संचित प्रारब्ध क्रियमाण, ये सारे पाप नष्ट हो जाती है। खिपंती खिपंती अघम, अघम पाप, अघम मतलब घोर पाप नष्ट हो जाती है। यही विधि, यही फॉर्मूला श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी, ये जो पाप को नष्ट करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए, यदि एक ही भागवत के ये आज के ये एक ही श्लोकों को हमें हमें हमारा जीवन में ले लें, हमारा जीवन में उतारें, तो यहाँ पर कहते हैं भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान को हमें देख पाएंगे। खिपंती अघम, ये विधि को पालन करने से घोर पाप नष्ट हो जाता है। महत्वपि, कितने भी घिनौने काम करो ना क्यों, कितने कदर ये काम, कितने घिनौने कदर ये काम भी करो ना क्यों, पाप हो आप लोगों से हो गया भी, यदि ये उपाय ये करने से, पाल नियम विधि को पालन करने से आप घोर पाप को नष्ट कर पाओगे। यहाँ पर बहुत बड़े भागवत पुरुष, यहाँ पर वक्ता को हमें ध्यान देना चाहिए। वक्ता कौन है? ये जो बातें कहा जा रहा है, ये कहने वाला व्यक्ति कौन है? व्यक्ति महत्व है, जो ये उपदेश कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, यहाँ पर आपका ध्यान सुखदेव गोस्वामी पाद के ऊपर होनी चाहिए। ये वक्ता जो है वो कितने भारी व्यक्ति है, क्योंकि जितना भारी व्यक्ति होती है उनका उपदेश भी इतना भारी होती है। तो यहाँ पर जो हमें श्रवण कर रहे हैं, हमें वक्ता को ध्यान रखना चाहिए। तो हमें हमारा ध्यान श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वो कहते हैं तो बेणु गुण इब अनल। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं आप ये फॉर्मूला, ये जो मैं उपाय बताया, ये उपाय को पालन करने से आप कितना बड़ा भी पापी व्यक्ति हो, आपका सारे पाप नष्ट हो जाएगा। कैसे? जो गांव के हैं ये भागवत को समझ पाएंगे, शहर के बॉम्बे के सिटी शहर में रहने वाले लोग भागवत को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भागवत का कथा, भागवत में बहुत सारे जो बातें आई है वो गांव का उदाहरण उसमें बताया गया है। ये बॉम्बे शहर में कहां बंबू बांस कहां पर मिलेगा, बांस का जंगल कहां पे मिलेगा? कोई सो में अपने बिल्डिंग के भीतर इतना छोटा बंबू लगा के रखा है, उसको थोड़ी ना बंबू कहा जाता है। आप गांव में जाओगे देखोगे कितना मतलब एकड़ एकड़ जमीन में बंबू है, बांस। हाँ, गांव में जाओगे देखोगे कितने बांस है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद देखिए, ये भागवत व्यक्ति है, ये गांव का उदाहरण को देख करके ये भागवत को समझाने के लिए वो प्रयास करते हैं। हाँ, तो ये कहते हैं हमारा पाप उसी प्रकार का नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार बांस के मूल में जो सूखा पत्ता गिरता है ना, बांस पेड़ से जो सूख करके जो पत्ता गिर करके उनका मूल में पड़ता है, और ये पत्ता आग लगने मात्र से ही तुरंत जल करके भस्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार केवल ये उपाय, ये फॉर्मूला को, ये जो बताया ये उपाय को पालन करने से बांस का पत्ता जिस प्रकार का जल करके भस्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आप कितने बड़े पापी व्यक्ति हो ना क्यों, आपका पाप जल करके भस्म हो जाएगा। ये बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं। तो ये बात श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी का ये फॉर्मूला, ये उपाय को सुन करके प्राय भक्तों में बड़े लोभ होती है। हाँ, कितना बड़ा पापी व्यक्ति हो लेकिन बांस का पत्ता जिस प्रकार तत्क्षणात जल करके भस्मीभूत हो जाता है, ये भक्ति का उपाय पालन करने से तुरंत हमें कितने बड़े कितने कितने पाप हो ऐसा ही नष्ट हो जाता है। ये बात को सुनकर के हमारा कितना बड़ा पापी व्यक्ति हो उनके भीतर एक हिम्मत आती है भक्ति करने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए एक प्रकार ताकत मिलता है, कि संतों के द्वारा ही ताकत प्राप्त होता है बद्ध जीवन, साधुओं के द्वारा एक प्रकार का डोज, एक प्रकार का डोज दिया जाता है जो लेने से हमारे भीतर एक शक्ति, क्योंकि शक्ति संचारित बद्ध जीव का जो संत शक्ति संचार करता है दीक्षा के द्वारा, दीक्षा काले ये शक्ति गुरु अपने शिष्य को शक्ति दीक्षा काले, दीक्षा के समय बद्ध जीव एकदम मरेला व्यक्ति है। बद्ध जीव मतलब एक प्रकार का मृत जीवन है, बद्ध जीवन मतलब एक प्रकार का मृत जीवन है, लेकिन गुरु क्या करते हैं दीक्षा काले ये शक्ति को संचार करते हैं शिष्य के भीतर। कौन सा शक्ति? ना भगवान को प्राप्त करने की शक्ति, भगवान को देखने की, वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ का प्रिय दर्शन, प्रिय व्यक्तियों को दर्शन करने के लिए और दीक्षा काले गुरु वो शक्ति संचार करते हैं शिष्य के भीतर। तो यहाँ पर ये जो श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी ये जो बताते हैं ये बात को सुनकर खास करके वैष्णवों में भक्तों में एक प्रकार का लोभ उत्पन्न होता है, एक प्रकार का बहुत बड़ा लोभ होता है। किस प्रकार का लोभ? न केचित, केवल मुझे भक्ति करना है और कुछ नहीं करना है। भागवत कलियुग में ऐसा एक लोभनीय ग्रंथ है, इतने आकर्षणीय ग्रंथ है, केवल एक बार हिज होलीनेस विष्णु स्वामी महाराज अभी जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में अपने शरीर को छोड़े, एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य को बता रहे थे, गृहस्थ शिष्य थे, तो महाराज जी को जब पूछे कि महाराज मैं गृहस्थ हूँ मुझे क्या करना है, क्योंकि एकदम मैं घायल हो चुका हूँ गृहस्थ जीवन के मित्र है, एकदम मैं घायल हूँ कि गृहस्थ जीवन एक प्रकार का ऐसा जीवन है तो घायल जीवन है, तो बड़े ही कमजोर होकर के जब अपने गुरु के पास पहुंचा और इस प्रकार का स्थिति से अपने को बचाने के लिए बड़े कातर से पूछा, तो विष्णु स्वामी महाराज बताएं कि केवल आप घर में बैठकर के भागवत का अध्ययन करो, केवल भागवत का यदि रोज कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो भागवत उनके ऊपर कृपा करता है, और उससे आगे एक कदम बढ़ाएंगे, उससे आगे और थोड़ा हमें हमारा पैर को बढ़ाएंगे, तो पैर बढ़ाना मतलब ये भागवत को समझना है। कैसे? भागवत को समझना है कि भक्त भागवत के द्वारा भागवत को अमल करना है, भागवत का जो रस है ये रस को आस्वादन करना है। कैसे? परीक्षित महाराज भागवत तो अपने मृत्यु का खबर पा करके वो तो खुद ही भागवत को लेकर के बैठ जाते जा सकते थे ना, तो खुद ही क्यों भागवत को ले? परीक्षित महाराज कितने बड़े व्यक्ति है, परीक्षित महाराज कितने बड़े भक्त है, इतने बड़े भक्त भी तो वो भागवत को समझने के लिए एक भागवत ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, एक भक्त भागवत का आश्रय लिए। परीक्षित महाराज कितने बड़े भक्त है, ऐसे भक्त जो भागवत का रस को आस्वादन करना हुआ तो एक भक्त भागवत का आश्रय करना पड़ा। तो हम परीक्षित महाराज के क्या है? तो हमें भक्त भावना ग्रंथ भागवत को समझना है। रोज सुबह रोज हमें मीरा रोड स्कन में आना चाहिए, क्योंकि सुबह ग्रंथ भागवत की और शाम के समय भगवत गीता की चर्चा होती है भक्तों के द्वारा। हमें भक्तों के द्वारा जब हम सुनेंगे तभी भगवान के सामने बैठकर, भक्त जो कहता है ये बड़ी बात नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी का आदेश है, प्रभुपाद जी यहाँ पर बैठे हैं, ये भागवत पुरुष ये है, भागवत व्यक्ति ये है, ये ग्रंथ भागवत है, ये भक्त भागवत है, भक्त भागवत है, आज यहाँ पर बैठे हैं। तो आप यहाँ पर आकर के सुन रहे हो, मतलब कोई सुना रहे, मतलब उनका कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये भक्त भागवत का प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो हमारा कोई, हम एक यंत्र है जो भागवत कह रहा है, ये एक माइक्रोफोन है, हमारा कोई औकात नहीं है। जिस प्रकार माइक्रोफोन का कोई औकात नहीं होता है, उसी प्रकार हमारा कोई ताकत नहीं है भागवत जैसे ग्रंथ को बखान करना। भागवत का नेता, भागवत का जो मास्टर है, भागवत का जो मालिक है, वो है श्रील व्यासदेव जी, श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद, वो है। हमें जब भागवत को कह रहे हैं, उनके जो झूठन जो भागवत छू करके छोड़ दिए, उनको हमें वो झूठन को खाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये झूठन में बहुत बड़ा सुख है, आनंद है। जब भक्त कुछ खा करके छोड़ देता है तो वो झूठन से बहुत बड़ा ताकत आ जाती है। तो ये भागवत को जब प्रभुपाद जैसे महान भक्त भागवत छू देते हैं, तब उनका मिठास और कई गुना बढ़ जाता है। यही मिठास को प्राप्त करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी के सभा में 88,000 श्रोता एकत्रित हो गए थे, 88,000। और श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुंह में कोई माइक्रोफोन नहीं था। श्रील सुखदेव गोस्वामी जब वो भागवत कह रहे थे, हमें तो अभी माइक्रोफोन के द्वारा भागवत की कह रहे हैं, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी जब वो भागवत की बखान कर रहे थे तो कोई माइक्रोफोन की, तो समझिए वो कितने बड़े भागवत व्यक्ति नहीं होंगे। 88,000 श्रोता बैठे हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी बिना कोई यंत्र के, तो कहां से ताकत है आती है? तो ये आध्यात्मिक शक्ति इतने दूर दूर जाती है, इतने दूर उनका बेग होती है। तो 88,000 हृदय को परिवर्तन कर दिया। कितने ये भक्त भागवत आज सारा विश्व को परिवर्तन कर दिया। प्रभुपाद जैसे महान भक्त भागवत तो आज सारा विश्व को परिवर्तित कर रहा है। बैठे हैं आज प्रभुपाद जी भी बैठे हैं। प्रभुपाद जी स्वयं कह रहे थे, आज भी मैं यदि कोई व्यक्ति मैं जो नियम छोड़ दिया, यदि कोई पालन कर रहा है, तो आज मैं इस संस्था में हूं। तो हमें भक्त ये ग्रंथ भागवत को समझना है। परीक्षित महाराज के महाजनस्य गतस्य पंथा, परीक्षित महाराज मृत्यु का प्रतिकार करने के लिए जिस प्रकार ये भक्त भागवत का आश्रय लिया, ठीक उसी प्रकार हमें ये भक्त भागवत की आश्रय करना चाहिए। और खास करके आप देखे होंगे गांव में ये मृत्यु के समय भागवत की पठन होती है, पढ़ाया जाता है, भागवत पाठ होती है मृत्यु के अंत समय में। तो समझिए ये भागवत कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ है, खास करके कलिजु के मनुष्य के लिए। तो यहाँ पर जब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने इस प्रकार का बखान कर रहे थे, तो हमारे भीतर एक प्रकार का आग्रह हो रहा है भक्ति के और कहते हैं कि चीज केवल्य भक्त्या वासुदेव परायण अगम ध्वनंती। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी भागवत की ये भक्ति का प्रोसेस को बताने के बाद जो परीक्षित महाराज सामने बैठे थे और जो भी सुन रहे हैं, उनके हृदय के भीतर केवल भक्ति करने के लिए इच्छा होती है, और केवल केवल भक्ति के द्वारा ही हमें हमारा सब कुछ को, पाप हो कुछ भी हो, सब नष्ट कर सकते हैं। कर्म ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं केवल भक्तिया वासुदेव परायण अघं ध्वनंती। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति शब्द जो है वो क्या है? क्या भक्ति मतलब? आसक्ति। किसके प्रति आसक्ति? भगवान के प्रति। केवल भगवान के प्रति आसक्त हो जाना, यही भक्ति है। जब कोई भक्तों को भगवान के प्रति आसक्ति का बीमारी हो जाता है, आसक्ति हो जाता है भगवान के प्रति, बस उनका भक्ति हो गया। ये आसक्ति, हमें भगवान के प्रति आसक्त नहीं होंगे या भौतिक संसार के प्रति आसक्त होंगे, तो यही आसक्ति जब भगवान के प्रति होती है, यही भक्ति है आसक्ति। तो यहां पर कहा जाता है केवल भक्तिया वासुदेव परायण। परायण मतलब वासुदेव, वसुदेव के पुत्र के प्रति यदि किसी का आसक्ति हो गया, अघं ध्वनंती कात्स्यन, संपूर्ण रूप से, अघं अघं मतलब संपूर्ण रूप से उनका पाप नष्ट हो जाता है। अघं ध्वनंती, अघं ध्वनंती कात्स्यन, कात्स्यन केवल भक्ति के द्वारा, केवल के चीज, केवल भक्ति, केवल भक्तिया, केवल भक्ति के द्वारा। भक्ति किसको? कोई देवा देवियों के प्रति नहीं है, केवल भक्ति वासुदेव, वासुदेव के प्रति जब हमारा भक्ति होती है, तभी जाके अघं ध्वनंती पाप नष्ट होती है। और भगवद गीता के भीतर भी भगवान दैवी उपासक बनने के लिए बहुत सावधान करते हैं। कोई देवा देवी का उपासक साधक मत बनो। देवा देवी भी स्वतंत्र नहीं है, फिर उनका साधक कैसे मुक्त होंगे? देवता लोग भी मुक्त नहीं है, तो अपने साधक, अपने उपासक को वो कैसे मुक्त कराएंगे, छुड़ाएंगे? इसीलिए भगवान भगवद गीता में देवा देवी का भक्ति नहीं करने के लिए मना किए। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी भी यही बात को कह रहे हैं, केवल भक्त्या, केवल भक्ति, केवल्या भक्त्या वासुदेव, वासुदेव के प्रति हमारा भक्ति होना चाहिए। कैसे? ना वासुदेव परायण, आसक्ति होनी चाहिए, आसक्ति रूप से, आसक्ति मतलब गंभीर भाव से भक्ति करनी चाहिए, आसक्त होना चाहिए। ये आसक्ति के साथ यदि हम भक्ति करेंगे, अघं ध्वनंती कार, संपूर्ण रूप से हमारा पाप को हम नष्ट कर सकते हैं। निहारम एव भास्कर, ठंडी के समय में आप देखे होंगे जब निहार, कोहरा होती है आकाश में, लेकिन जैसे सूर्य आते हैं तो ये कोहरा अपने आप नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार भक्ति करने में, केवल भक्ति करने से अघं ध्वनंती घोर पाप नष्ट हो जाता है। आगे श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ये भक्ति का बखान करते हैं, ये भक्ति का बखान और करते होकर कहते हैं, न तथा ही अगवान राजन पुयते तब आदि भी, और कोई फर्म, और कोई मार्ग नहीं है, न ही तथा ही अगवान राजन, हे राजन, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं, राजन, हे राजा, न तथा ही अगवान, अगवान मतलब बहुत बड़ा पापी व्यक्ति, न तथा ही अगवान राजन पुयते, अपने को पवित्र नहीं बना सकते हो। कर्म ज्ञान योग, बड़े बड़े विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, कितने बड़े बड़े योगी थे, लेकिन काम रूपी दोष के द्वारा वो अपवित्र हो गए। दुर्वासा जी कितने बड़े योगी है, लेकिन काम जब आता है, काम जब जीव के भीतर आता है ना, वो काम उनको दूषित कर देता है। जीव दूषित नहीं है, जीवात्मा तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध है, शुद्ध वस्तु है जीवात्मा, आत्मा जो है शुद्ध वस्तु है। लेकिन आत्मा कब दूषित होती है? जब ये काम, क्रोध, लोभ, ये चीज जब आ जाता है, तब वो दूषित हो जाता है। तो यहां पर यही कहा जाता है, तो केवल भक्ति के द्वारा पूयते, हे राजन, हे राजा, आपको जो मृत्यु रूपी दोष लगा हुआ है, हे राजा, आपने जो मेरा आश्रय, यहां पर आश्रय लिए हो, तो आप जो, आपके ऊपर जो मृत्यु दोष लग गया है, तो तो उनसे पवित्र होने के लिए क्या करना है? अघवान राजन तप तप तपस्या के द्वारा पवित्र नहीं हो सकते हो, तप आदि भी। और श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया यहाँ पर आकर के भागवत श्रवण कर रहे हो। तो कहते हैं तप आदि भी तपस्या के द्वारा हमें अपने को शुद्ध नहीं बना सकते हैं, तपस्या के द्वारा हमें भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। तप आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राण, जब ये प्राण को कैसे अपने को पवित्र करने की मार्ग क्या है ना, कृष्ण अर्पित प्राण, ये प्राण को जब हमें कृष्ण को अर्पण करेंगे, ये जो प्राण है, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं परीक्षित महाराज, हे राजा, तपस्या के द्वारा अपने को पवित्र नहीं बना सकते हो, तो पवित्र बनाने के उपाय क्या है ना, कृष्ण अर्पित प्राण, कृष्ण को जब ये प्राण को अर्पण करोगे, भोग लगाओगे। कभी कभी कोई कहते हैं प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, तो प्रभु जी यदि संपूर्ण रूप से कृष्ण को ये प्राण को अर्पण नहीं कर किया है तो वो आशीर्वाद किसी को नहीं कर सकता, कि जब तक ये जीवन को भोग नहीं लगाया तो प्रसाद कैसे दूसरे को दोगे। ये जीवन को जब आप अर्पण नहीं किए हो, मतलब भोग नहीं लगाए हो, वो भोगता है। आप जब ये जीवन को संपूर्ण रूप से भोग नहीं लगाए हो भगवान के चरण में, तो भोग लगने के बाद तो आपके हाथ में प्रसाद आएगा ना। तो जब आप भगवान के चरण में संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे तभी तो आपके ऊपर भगवान का कृपा आएगा। जब कृपा आएगा तो जाके आप दूसरे को कृपा दे सकते हो ना। जब आप संपूर्ण रूप से कृष्ण अर्पित, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण अर्पित प्राण, ये प्राण को कृष्ण अर्पण करो, कृष्ण को अर्पण करो। जब संपूर्ण रूप से ये प्राण को हमें कृष्ण को अर्पण नहीं किए तो हमें कृपा का कृपा रूपी पात्र हमारे हाथ में नहीं है। तो सामने वाला व्यक्ति जब कहता है कि प्रभु जी हमें हमारे ऊपर थोड़ा कृपा करो, तो वहां पर जवाब देना चाहिए भक्तों को कि मैं तो खुद ही मैं कृष्ण को मेरा ये प्राण को अर्पण नहीं किया, तो मुझे तो अभी तक तो कृपा नहीं प्राप्त नहीं हुआ, मैं कैसे आपको कृपा प्रदान करूं। तो कृपा प्रदान करने के व्यक्ति प्रभुपाद है, वो ही कृपा कर सकते हैं। तो यहां पर यही बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कृष्ण अर्पित प्राण, प्राण को कृष्ण अर्पण करो। कैसे आगे जाकर के कहते हैं प्राण को अर्पण करना, इतना कोई सहज से अपने प्राण को कृष्ण को अर्पण नहीं कर सकता। कोई भी कितने भी व्यक्ति हो, अपने घर के जो पत्नी है स्त्री है अपने पति को भी अपना प्राण अर्पण नहीं कर पाता है। डाइवर्स हो जाएगा चलेगा, डाइवर्स मंजूर है, लेकिन ये प्राण को संपूर्ण रूप में आपको दूं ये कैसे। हाँ, माता जी को बुरा नहीं मानना, वैदिक शास्त्रों में पहले कितने बड़े ये था, संपूर्ण रूप में पुरुष के अधीन में थे। इसी प्रकार जीवात्मा जो है प्रकृति है, प्रकृति जो है स्त्रीलिंग है, तो प्रकृति होने के नाते और भगवान जो है पुरुष है, जीवात्मा प्रकृति है और भगवान पुरुष है, तो प्रकृति का कर्तव्य होती है पुरुष के संरक्षण में शरणागत रहे, समर्पित हो जाए। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण अर्पित प्राण, कृष्ण को अर्पण करना है। कैसे? अपने ऐसे नहीं होता है, कैसे प्राण करना है, और प्राण बड़े ही सहज से कर लोगे, लेकिन कैसे ना, तत्पुरुष निसेवया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत्पुरुष निसेवया, निसेवना, तत् कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया। हाँ, तत्पुरुष निसेवया, तत्पुरुष निसेवया मतलब कृष्ण के प्रतिनिधि के सेवा में अपना जीवन को लगाने से। कितनी बड़ी सहज बात बताते हैं। यहां पर श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण अर्पित प्राण को कृष्ण को अर्पण करना है, लेकिन कैसे, तो आगे हमें भी उसका सलूशन देते हैं, उसका भी समाधान बताते हैं। जब ये कृष्ण तत्पुरुष निसेवया, कृष्ण के प्रतिनिधि के सेवा में अपने जीवन को लगाने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हमारे महाराज जी कुछ उनका बीमार थे तो मैं फोन किया, दिल्ली में थे तो मैं फोन किया कि महाराज आप कैसे हैं। तो ऐसा मैं डर डर के पूछ रहा हूँ, महाराज को कैसे बात कर सकता हूँ, हम तो डरते हैं। तो ऐसे पूछा कि महाराज आपका तबीयत कैसा है, आप कौन बोल रहे हो, ऐसा हरि बोल आप कौन बोल रहे हो, आप ब्रह्मचारी हो ना ग्रस्त हो। मैं बोला मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो मुझे जवाब मिला तो आप हरिनाम करो मैं ठीक हो जाऊंगा। उनका जवाब मिला वहां से कि आप हरिनाम करो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, तो ये हरिनाम करना है, कृष्ण को प्राण अर्पण करना है, लेकिन कैसे ना, प्रभुपाद जैसे संतों के द्वारा उनके आदेश को पालन करने से। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे तत्पुरुष निश्चय भया, कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा में अपने जीवन लगाने से। जो भी हमारे सामने सेवा आता है ये सब गुरु की सेवा है, कृष्ण की सेवा नहीं है। कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करना हमारा कोई शक्ति नहीं है, कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करना हमारे में कोई ये नहीं है। तो हमें जो भी सेवा कर रहे हैं ये गुरु की सेवा कर रहे हैं। जब गुरु आश्रम में एक शिष्य जब रहता है तो उनको ये बात को ध्यान रखना चाहिए, मैं भगवान का सेवा करने के लिए मेरे में कोई औकात नहीं है। तो मैं गुरु गृह में हूँ गुरु की सेवा करने के लिए। तो गुरु का जो आदेश है उसी को मानना, पालन करना, अपने जीवन में लेना, वही ही हमारे जीवन की भगवान को अर्पण करने, कृष्ण अर्पित प्राण। केवल गुरु के आदेश जो है, आदेश को पालन करने मात्र से हमारे जीवन को, प्राण को कृष्ण को अर्पण करने में सक्षम हो पाएंगे, नहीं तो सक्षम नहीं हो पाएंगे। कृष्ण को प्राण देना इतना सहज नहीं है, लेकिन जैसे हमें पालन करेंगे उनके आदेश को तो आसानी से प्राण को हमें कृष्ण को दे देंगे। कृष्ण जे तुमार कृष्ण दीते पार, ये तो अलग बात हो गया, जो हमें कृष्ण को हमारे जीवन को दे सकते हैं। कृष्ण अर्पित प्राण सधी चीन, आगे जाके सधी चीन ही अयं लोकं पंथा खेम कुत अकुत भय। तो कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं यही ही एकमात्र मार्ग है कृष्ण को प्राण अर्पण करना है तो गुरु के आदेश पालन करने से। और गुरु के आदेश पालन करना हमारे में, हमारे जो हम लोगों के लिए एक ही मात्र कल्याणकारी मार्ग है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं सभी चीनों ही अयं लोके, लोके ये लोक, लोक मतलब ये भौतिक जगत, ये भौतिक संसार में ही अयं, निश्चित रूप से बड़े ही जोर दे के कह रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने यहाँ पर ही शब्द का अर्थ निश्चित, मतलब निश्चित करो, गुरु कृष्ण को अर्पण करना है तो गुरु का आदेश पालन करो, ये निश्चित करो। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यही ही उपयुक्त पंथा है, यही ही उपयुक्त मार्ग है। क्या नहीं अयं लोको पंथा खेम अकुत, और केवल संतों की आदेश पालन करने से हमारे जीवन में जो डर, ये डर से हमें अभय हो जाते हैं। कहते हैं बहुत बड़ा मंगल होती है भक्तों के आदेश को पालन करने से। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी कहते हैं खेम शब्दों का अर्थ है मंगल होती है और अकुत भय, और हम निडर बन जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ये भौतिक संसार में भयभीत है, भय है, हर व्यक्ति भयभीत है, लेकिन भक्तों के आश्रय में होने से, जिन्होंने मृत्यु के सर के ऊपर अपने चरण को रखा है, मृत्यु की भी अपने कंट्रोल में रखा है, मृत्यु को जो भक्त ने जीत लिया है, ऐसे भक्तों के शरण में जाएंगे हमें भी मृत्युंजय बन जाएंगे, हमारा बहुत बड़ा मंगल होगा। ये बात को सुशील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सुशील साधव यत्र नारायण परायण। सुशील जिनका आचरण दूसरे का हृदय को परिवर्तित कर देता है, संत लोग का आचरण ऐसा होता है, उनका आचरण देखने मात्र से ही हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता है। सुशील जिनका आचरण और साधव साधु, ऐसे शुद्ध आचरण करने वाला साधु यत्र नारायण परायण, ऐसे साधु जो नारायण भगवान के प्रति आसक्त है, ऐसे भक्तों के आदेश में रहकर, ऐसे भक्तों के प्रति हमारा स्नेह को बढ़ाकर, जब हमें उनके आदेश को पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्राण को हमें कृष्ण को अर्पण करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो आज हमें श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी के द्वारा ये जीवन को कैसे कृष्ण को देना है, आज ये भागवत की कथा में हमें सीखे सुने, तो फिर हमें को हम खुद को तैयार करना चाहिए कि जीवन को कैसे हमें कृष्ण को दें श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेश के अनुसार। और फिर हमें नेक्स्ट क्लास से क्लास में सुनेंगे किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी आगे क्या उपाय बताते हैं और भगवान का निकट करीब होने के लिए। तो और नेक्स्ट क्लास में हम सुनेंगे। और अनाउंसमेंट एक है, कल रामनवमी उपलक्ष्य कल भी ठीक 7:30 से 9 बजे राम कथा होगी, तो सब सारे भक्तों को अनुरोध है तो कल भी 7:30 से 9 बजे तक आप लोग यहाँ पर उपस्थित रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री लतभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे, सबके लिए महाप्रसादम है, तो आप भगवान का दर्शन लेकर सभी प्रसाद हाल में जाइए, वहाँ पर भगवान का प्रसाद स्वीकार कीजिए। हरे कृष्ण।